सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा, जो लेकर जाएगी आपको महाभारत के युग में। हमारे सभी सीजन्स को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक्स लॉट। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे सीजन 7 के पहले एपिसोड की। पिछले सीजन के अंत में अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए दिव्य रथ द्वारा स्वर्ग लोक जा रहे थे। चलिए अर्जुन की इस यात्रा में हम भी उनके साथ चलते हैं। अर्जुन सूर्य के समान उस दिव्य रथ पर बैठकर ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर जाकर उन्होंने कई अद्भुत विमान देखे। वहाँ ना सूर्य प्रकाशित होते थे और ना ही चंद्रमा। वहाँ हर व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वयं ही प्रकाशित हो रहे थे। यही पुण्य आत्मा व्यक्ति पृथ्वी से दूर होने के कारण हमें तारों के रूप में दिखाई देते हैं। उस लोक में सिद्ध राजा और वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहां पहुंचे थे। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी स्वर्ग की ओर जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा यह सिद्धि पाई थी। इसी प्रकार सहस्त्रों गंधर्व, ऋषि, अप्सराओं के समूह खुद में प्रकाशित हुए उस लोक में विचर रहे थे। उन सभी को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने प्रसन्न होकर मातली से उनके विषय में पूछा। तब मातली ने कहा, कुंती कुमार, ये वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। उन्हीं को आप भूतल पर तारों के रूप में देखते हैं। अब अर्जुन ने स्वर्ग द्वार पर खड़े ऐरावत को देखा, जिसके 4 दांत बाहर निकले हुए थे। अर्जुन ने राजाओं के उस लोक में भ्रमण किया और वहां से आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती के दर्शन किए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अर्जुन ने अमरावती में क्या क्या देखा। अर्जुन ने सभी ऋतुओं के फल और फूलों से सुशोभित वृक्षों को देखा। वहां की वायु में कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की गंध व्याप्त थी। अर्जुन ने अप्सराओं से सेवित दिव्य नंदन वन के भी दर्शन किए। उसके दिव्य वृक्ष बहुत सुंदर थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो अपने पास बुला रही हूँ। महाभारत के अनुसार जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहते हैं और जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग उस लोक के दर्शन नहीं कर सकते। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है, व्रत का पालन नहीं किया है, जो वेदों के अध्ययन से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया है और जो यज्ञ तथा दान से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को उस पुण्य लोक के दर्शन नहीं होते हैं। जो यज्ञ में विघ्न डालने वाले नीच, शराबी, मांसाहारी और दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार इस लोक के दर्शन नहीं पा सकते। उस वन के दर्शन करने के बाद राजकुमार अर्जुन अमरावती नगरी में प्रवेश कर गए। वहाँ देवताओं के सहस्त्रों विमान खड़े हुए थे और कई विमान इधर उधर जा रहे थे। अर्जुन को वहाँ आया देख देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार किया। कोई उन्हें आशीर्वाद देता तो कोई उनकी स्तुति और प्रशंसा करता। उनका स्वागत सत्कार दिव्य था। शंख और दुधुम्बियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सूरविथि नामक मार्ग से अर्जुन आगे बढ़ने लगे। उस मार्ग के अंत में अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। उन्हें देखते ही अर्जुन उस रथ से उतर गए और उन्होंने देवराज को प्रत्यक्ष देखा। देवराज इंद्र के मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिसमें मनोहर स्वर्ण से बना हुआ दंड शोभा पा रहा था। विश्वावसु आदि गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण गण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और सभी इंद्र संबंधी मंत्रों द्वारा उनका पूजन कर रहे थे। अर्जुन ने निकट जाकर इंद्रदेव के चरणों में मस्तक रख दिया और देवराज ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया। देवराज ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास ही बिठा लिया। वहां बैठे हुए अर्जुन दूसरे इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। इसके बाद इंद्र ने अर्जुन को आश्वासन दिया। उस समय वहां नियम अनुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान शुरू हो गया। अब अनेक अप्सराएं वहां इंद्र सभा में अलग अलग स्थानों पर नृत्य करने लगी। अप्सरा उर्वशी को देखकर पांडु नंदन अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सभी देवताओं से पूजित होकर अर्जुन अपने पिता के घर में ही रहने लगे और महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र से उनके प्रिय अस्त्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाली उन अश्नियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर मेघों की घटा आती है और मोर नृत्य करने लगते हैं। सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर अर्जुन को अपने भाइयों का स्मरण हुआ, परंतु देवराज के विशेष अनुरोध से वे 5 वर्षों तक सुखपूर्वक वहीं ठहरे रहे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। यह शिक्षा अभी तक मनुष्य लोक में प्रचलित नहीं है। तुम देवताओं से इसका ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। जिसके बाद देवराज इंद्र ने अर्जुन को संगीत की शिक्षा के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। अपने मित्र से मिलकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें गीत, वाद्य और नृत्य की बार बार शिक्षा दी। वहीं अर्जुन के मन में तनिक भी शांति नहीं थी। उन्हें दुशासन और शकुनी के वध के लिए मन में रोष होता था। अपने भाइयों और माता को याद करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, इंद्र ने अर्जुन को उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन को बुलाया और एकांत में उनसे यह बात कही, गंधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ और उर्वशी को अर्जुन की सेवा में उपस्थित करो। चित्रसेन ने तथास्तु कहकर इंद्र से आज्ञा ली और उर्वशी के पास गए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया देख उनका स्वागत सत्कार किया। चित्रसेन ने उर्वशी को देवराज के द्वारा दिए गए आदेश के विषय में बताया और साथ ही साथ अर्जुन के गुणों के विषय में भी बताया। उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी स्वीकृति दे दी। चित्रसेन से विदा लेकर उर्वशी साज श्रृंगार कर महीन वस्त्र पहनकर अर्जुन के कक्ष की ओर गई। वह क्षण भर में अर्जुन के महल में जा पहुंची। महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। द्वारपालों ने अर्जुन को उर्वशी के आगमन की सूचना दी। तब उर्वशी अर्जुन के महल में उपस्थित हुई। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुंद गए। उस समय अर्जुन ने उर्वशी के चरणों में प्रणाम किया और गुरु पत्नी के समान ही उनका स्वागत सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, सभी अप्सराओं में आपका सबसे ऊंचा स्थान है। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। वहीं अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने चित्रसेन के द्वारा कही गई सारी बातें अर्जुन को सुनाई। उर्वशी की बातें सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले, देवी, तुम जैसी बातें कर रही हो उसको सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नी के समान पूजनीय हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए और कोई विचार नहीं है। मैंने जो उस समय सभा में तुम्हें एक टक दृष्टि से देखा था उसका एक विशेष कारण था। यह आनंदमयी उर्वशी ही पुरु वंश की जननी है, ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और उसी पूज्य भाव को लेकर मैंने तुम्हारी ओर देखा।
तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव अपने मन में ना लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो और उसी पूज्य भाव को लेकर मैंने तुम्हारी ओर देखा था। तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव अपने मन में ना लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो। तुम मेरे लिए गुरु से भी ज्यादा गौरवशालिनी हो। अर्जुन की ये बातें सुनकर उर्वशी आगे क्या करेगी, ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले शुक्रवार। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है MySutradhar। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में।